الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ پروگرام آپ اس ٹائم دیکھتے ہیں آپ کی رائے, اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکا موجود ہوتے ہیں حسب معمول. آج بھی ہمارے ساتھ مولانا اسد مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مولانا خالد مدنی ہیں, سلمان مشتاق بھائی ہیں ہمارے ساتھ, اور مولانا عبدالواجد مدنی بھی موجود ہیں. سلسلے کا فارمیٹ جیسا کہ آپ کو پتہ بھی, ایک بار دہرا بھی دیتا ہوں نئے ناظرین کے لیے کہ ہم کچھ پکچرز شو کرتے ہیں یہاں پہ دکھاتے ہیں, اور ہمارا جو پینل ہے وہ بھی دیکھتا ہے, آپ کو بھی دیکھنے کی اجازت ہے, اور ایک رائے ہوتی ہے ہر ایک فرد کی اس پکچر کو دیکھ کر. اور ظاہر سی بات ہے ایک پکچر چار افراد اور مختلف رائے دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور سینیریو بن بھی جاتا ہے, تو ایک ایک کر کے الگ الگ رائے آ رہی ہوتی ہے, بعض اوقات اتفاق بھی ہو جاتا ہے. ایک پکچر دیکھ کر اس کے مختلف اینگلز یا مختلف زاویوں سے کتنے رنگ نکلتے ہیں وہ ہمارے پروگرام میں ہوتا ہے, اور اس کی پوزیٹیوٹی آپ کہہ لیں اکثر و بیشتر ہم ڈسکس کرتے ہیں. آپ کو میں دعوت دوں گا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ بھی ایک رائے قائم کیجئے, آپ بھی دیکھیے کہ اس میں سے کون کون سے نکات نکل رہے اور کون کون سے سبق مل رہے ہیں. ایسے ہی صرف پکچر میں نہیں بلکہ پوری زندگی کی جو ایک بڑے کینوس پہ آپ پکچر دیکھیں تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزوں سے مختلف چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک ہی چیز سے, ایک ہی کام سے, ایک ہی فیل سے, ایک ہی ایکٹیویٹی سے مختلف افراد مختلف نتیجے نکال رہے ہوتے ہیں. تو آپ بھی ہمارے ساتھ شریک رہیے گا, اور دوران پروگرام انشاءاللہ ایک نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں گے, اگر آپ بھی کوئی ایسی پکچر ذہن میں ہے یا موجود ہے آپ کے پاس موبائل وغیرہ میں کہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنے چاہتے ہوں کہ وہ بھی پروگرام میں شامل ہو اور اس کے اوپر بھی ہمارا پینل ڈسکشن ہو, تو آپ ہمیں اس نمبر پہ بھیج سکتے ہیں. درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ تصویر کے ساتھ اپنے معزز مہمانوں کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان کنز العمال شریف میں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا, اللہ پاک اس کی 100 ضرورتیں پوری کرے گا, 70 ضرورتیں آخرت کی اور 30 ضرورتیں دنیا کی پوری کی جائیں گی. یقیناً درود پاک بڑی برکتوں, رحمتوں اور حاجتوں کی تکمیل کا ذریعہ ہے. آپ بھی برکت کے لیے درود پاک پڑھتے رہا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بڑھتے ہیں پہلی پکچر کی طرف اور دیکھتے ہیں جی کس پکچر کا انتخاب کیا جا رہا ہے جو سب سے پہلے ہمیں دکھائی جا رہی ہے. بارش ہو رہی ہے, ٹھیک ٹھاک بارش ہو رہی ہے. بہرحال یہ ایک علامتی پکچر کہوں گا میں اسے, شاید ریئل لائف میں یہ اتنی مؤثر نہ ہو, لیکن جو پیغام ہے, اگر میں شروع کروں تو اسد بھائی آپ ہی سے پہلے, تو
جی پیغام بہت واضح ہے اور یہ ایک ہمارے معاشرے کی عکاسی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں
جی,
اور انفرادی طور پر اپنا محاسبہ بھی کیا جا سکتا ہے. پکچر میں جو ظاہر ہو رہا ہے کہ آئیڈیا فقط ذہن میں ہونا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے, آپ پار نہیں لگ سکتے جب تک اس کے ساتھ ایکشن نہ ہو.
ٹھیک,
اور اس پر یہ بھی کہا گیا کہ آئیڈیا جب تک ایکشن کے ساتھ نہ ہو تو وہ صرف ایک تمنا ہے اور خواہش ہے, کیونکہ پوری ہو گئی تو ہو گئی, نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی, اور اکثر وہ نہیں ہوتی. اور اگر آئیڈیا کے ساتھ آپ ایکشن بھی کرتے ہیں تب جا کر آپ کا جو آئیڈیا ہے وہ تکمیل کو پہنچتا ہے. ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو سوچتے تو بہت کچھ ہیں کہ میں یہ بھی کر لوں, میں وہ بھی کر لوں. ان کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو آپ کو पाकिस्तान की तरक्की के बहुत
आइडिया
सारे
की दुकान
आइडियाज
होते
दे
हैं।
देंगे। जी बिल्कुल, आप कोई भी कलाम कर ले उनके सामने, कोई भी ऐसी चीज उनसे शेयर कर लें कि जो उन्होंने ना कभी देखी हो ना सुनी हो, लेकिन उसमें भी वो अपने आइडिया को जो है ना कहीं देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब उनकी प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हैं तो बहुत पीछे नजर आते हैं, बहुत सोसे पीछे नजर आते हैं। एक ये भी पहलू है। दूसरा, मैं खुद गौर करूं कि मेरे दिलो दिमाग के अंदर बहुत सारे आइडियाज होंगे, लेकिन आइडिया कमा हक्कू उस वक्त तक आपको बेनिफिट नहीं देता इस तस्वीर में जिस तरह डूबने वाले हैं, कि उनके दिमाग में आइडिया तो है लेकिन एक्शन की बोट उनके पास नहीं है, एक्शन की कश्ती जो है उनके साथ नहीं है, तो वो डूब रहे हैं। और जिसके साथ आइडिया और प्लस उसके साथ एक्शन भी है, तो वो गोया के पानी से सलामती के साथ आगे बढ़ रहा है। तो किसी ने कहा, बहुत अच्छी बात है सोचें, लेकिन उससे बेहतर ये है कि जितना आपने सोचा है वो कम ही क्यों ना हो, अगर उसके साथ एक्टिविटी हो, एक्शन हो, एग्जीक्यूशन हो, तो आप जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे पहुंच सकते हैं।
जी सलमान मुश्ताक भाई, आप क्या कहेंगे?
असल भाई की बात से मैं इतफाक करता हूँ जैसा कि इन्होंने कहा, लेकिन यही बात है कि आपस में अगर कोऑर्डिनेशन हो, एक जैसे पिक्चर में देखा जा रहा है आइडियाज के हवाले से एंड ऑफ द टाइम एक्शन है, तो उसके हवाले से यही है कि जैसे आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आइडिया सबके पास है, लेकिन ये कि जो एक भाई है उनके दिमाग में जो आइडिया है कि एक दूसरे के साथ अगर चला जाए आगे तो वो अपनी मंजिल पे यानी कि किनारे तक पहुंच सकता है, क्योंकि उन्होंने दिमाग यूज किया माइंड को और उन्होंने
दिमाग
आगे।
तो तीनों ने यूज किया हुआ है,
हाँ जी
आइडिया तो तीनों के ही पास है। ठीक
आइडिया तो है, लेकिन ये कि उन्होंने ज्यादा फोकस नहीं
है,
किया
हाँ,
एक्शन पे कि मैंने आगे
उन्होंने उसे एक स्टेप आगे बढ़ो एक्शन लिया।
उन्होंने आगे स्टेप को फॉलो किया, उन्होंने बोला यही मुझे करना चाहिए, देन ये आगे बढ़ने का एक अच्छा है कि आगे बढ़ने के लिए आपको आपस में, मैं तो यही कहूंगा कि कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, इसके बाद आप एक मंजिल पे आगे पहुंच सकते हैं।
ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाज़ औक़ात जो है वो अगले स्टेप पर बढ़ने के लिए किसी कोऑर्डिनेशन और किसी सपोर्ट की जरूरत होती है,
एग्जैक्टली
तो वो फराहम कर दी जाए तो शायद दूसरा शख्स भी आगे बढ़ जाए, ये कहना चाह रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल
अल्लाह पाक
एग्जैक्टली
बरकत अता फरमाए। खालिद भाई,
जी
मैं ये देख रहा हूँ कि ये तो लिख दिया है, आइडिया भी लिख दिया है, एक्शन भी लिख दिया है, करके भी दिखा दिया है। बाज़ लोग वाकईतन, असद भाई ने जैसे फरमाया था कि आप बैठ जाएं उनके साथ, तो आइडिए बहुत होते हैं
जी
और बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारी चीजें उनकी जंबील में मौजूद होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपनी रियल लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाए होते हैं, नाकाम होते हैं। मैं इसको सिर्फ नेगेटिव नहीं ले रहा, दूसरे व्यू में मैं चाह रहा हूँ कि कुछ गुफ्तगू हो हमारी, कि बाज़ औक़ात आइडिया है उस शख्स के पास और पॉजिटिव वे में मैं कह रहा हूँ किसी भी वजह से वो नहीं कर पाया, अब आया दूसरों के लिए क्या करना चाहिए। मैं सवाल पेश नहीं कर रहा, तस्वीर के तनाजुर में बात कर रहा हूँ।
इस सारी तस्वीर को देखने के बाद जो बात एक जहन में आई है वो ये भी है कि आइडियाज इंसान के पास होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि उनको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है। हर आइडिया जिस वक्त जहन में आया है उसी वक्त उसकी एग्जीक्यूशन भी की जाए या उसी वक्त वो क्लिक भी कर जाए, ऐसा जरूरी नहीं। तो थोड़ा सा बात जहन में आने के बाद उसका रिव्यू कर लेना चाहिए और उसको कुछ ऐसे अफराद के साथ भी शेयर कर लेना चाहिए कि जो आपके आइडिया को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है इसके लिए आपको अच्छे मशवरे दे सके, या अगर आप इसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तो वो कम से कम आपके साथ चल सके। कभी कभार ऐसा होता है कि काम जहन में आ जाता है कि ये करना है, लेकिन अगर बंदा तनहा करने जाएगा तो शायद मुकम्मल नहीं कर पाएगा। उसे अपने ख्यालात को, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी के साथ की जरूरत होती है, तो कभी उस साथ का इंतजार भी करना होता है। आइडियाज तो हैं दोनों के पास, कोशिश पीछे वाले भी दोनों अफराद कर रहे हैं, शायद कुछ वक्त की इनको जरूरत है, वो वक्त अगर मिल जाएगा तो इंशाल्लाह ये भी पार ही लग जाएंगे।
आपने दरमियान में उन्हें का हक अदा कर दिया, यानी असद भाई और सलमान भाई के दरमियानी बात की है आपने। अब्दुल वाजिद भाई, मैं आपके बारे में सोच रहा था कि बाज़ औक़ात यूँ होता है जब कोई रो होती है, कोई क्यू होता है और लोग लाइन में होते हैं, तो इंसान चाहता है मैं आखिर में हूँ, बाज़ औक़ात यूँ होता है, लेकिन बाज़ उस औक़ात उसकी फीलिंग होती है शायद मैं ही जो हूँ वो पहला फर्द हूँ, खिड़की मेरे ऊपर ही खुले, और मैं जल्दी से निकल रहा हूँ, तो मैं उस चीज़ के लिए आपसे तासीयत करता हूँ कि तस्वीर तो एक ही होती है, यानी पहले असल में मेरी एक फीलिंग है।
आप अंडर एस्टिमेट क्यों कर
नहीं,
रहे
अंडर
हैं?
एस्टिमेट नहीं कर रहा मैं, देखें
अभी ऐसी बात करेंगे कि आप भी सोचेंगे।
देखें ये तो प्रोग्राम का हुस्न है ना हमारे, कभी ये आखिर में, कभी आप आखिर में, अब ये जाहिर सी बात है वो तो चलता है। लेकिन बहरहाल मैं एक वैसी बात कर रहा था कि इंसान की सोचें अपनी होती हैं, लेकिन वो लाइन में फर्स्ट हो वो या लास्ट हो, दोनों सूरतों में अपनी सलाहियतों के बलबूते पर ही आपको आगे निकलना होता है,
हाँ
सरवाइव करना होता है।
जी,
तो इस पिक्चर में जो हम 3 दफा तो बाकायदा इस पे राय ले चुके हैं, आप क्या कहेंगे?
मैं तो जो लोग यहाँ पे 3 नजर आ रहे हैं उनके मैं एक्सप्रेशन में खोया हूँ। एक साहब हैं कि उनकी स्माइल इतनी ब्रॉड है कि उनकी जो बाछें हैं वो खिलकर कान को लग रही हैं,
या
और
अल्लाह।
दूसरे लोग जो हैं वो गर्दन झुकी हुई, बॉडी लैंग्वेज से बड़े डिप्रेस्ड स्ट्रेस्ड लग रहे हैं, और मुंह पे लिटरली 12 बजे हुए हैं। तो जो मैं समझा हूं वो ये है कि इफ यू आर प्रोएक्टिव सो यू विल बी सेटिस्फाइड इन योर लाइफ।
सही।
अगर आप आइडिया के साथ साथ, सोचने के साथ साथ अमली जिंदगी के भी आदमी है ना, आप लाइफ को प्रैक्टिकली देखते हैं, आप प्रैग्मेटिक हैं, आप इंट्रोवर्ट नहीं है, सिर्फ सोचते ही नहीं रहते बल्कि आप उसको एग्जीक्यूट करने की आदत भी रखते हैं, तो आपकी जिंदगी में खुशियां भी होंगी, आप जो है वो सेटिस्फाइड भी होंगे, और आप दूसरों से मुमताज भी होंगे।
सही।
और इसके बरक्स अगर आप प्रोएक्टिव नहीं है, प्रोएक्टिव मीन्स कि जब कोई काम करना तो उस पर मुकम्मल तरीके से पूरे
लवाजमात के साथ आपके लिए।
अपने पूरे इमोशंस के साथ, अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ, अपनी पूरी एनर्जी के साथ उस काम की तरफ मुतवज्जे होकर उसको पाया तकमील तक पहुंचाना, अगर आप ऐसे हैं तो आप अपनी जिंदगी में हर तरह की खुशियां और कामयाबियां देखेंगे। आपकी इमोशनल लाइफ जो होगी उसमें आप देखेंगे कि आप दूसरों से ज्यादा मुतमईन हैं, आपकी जो मुआशी हालत है उसमें आप देखेंगे कि यू आर फार मोर बेटर देन अदर पीपल।
ठीक।
इसी तरीके से आपका जो दूसरों के साथ सोशल इंटरेक्शन है, दूसरों के साथ जो आपका रिलेशन है, उसमें भी आप अपने आप को देखेंगे कि आप दूसरों से ज्यादा कामयाब हैं। और इसके बरक्स अगर आपके अंदर प्रोएक्टिविटी नहीं है, आपके अंदर जो है वो अमल, काम करने की लगन नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, तो आप पीछे भी होंगे, मुआशी तौर पर भी, इमोशनली भी आपकी लाइफ डिसबैलेंस्ड होगी, और आप जो है वो संकी मशहूर हो जाएंगे कि सिर्फ ख्यालात की दुनिया में साहब रहते हैं, अमल से, कुछ करने से, प्रैक्टिकल लाइफ से इनका कुछ लेना देना नहीं है।
सही। मैं भी इस तस्वीर को देख के एक बात सोच रहा था कि दुनिया में बहुत सारे लोगों की तरफ, आपने जो बात इरशाद फरमाई, आप चारों ने बजाय इरशाद फरमाई और ये सारी चीजें हैं, लेकिन बात वही है, ये तो बातें हैं, तो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो फिर कुछ और कंडीशंस होती हैं। मैं सोच रहा था कि बाजू का क्यों होता है कि बिलखसूस नाकाम रह जाने वाले या पीछे रह जाने वाले या अचीवमेंट ना करने वाले अफराद मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट को कोस रहे होते हैं, बुरा भला कह रहे होते हैं कि अगर फुला शख्स मेरी जिंदगी में नहीं होता तो मैं यूं कर लेता, फुला वक्त में यूं नहीं होता तो मैं यूं कर लेता। हालांकि उसी वक्त में, उसी इन्वायरमेंट में किसी और के पास वही वसाइल थे जो आपके पास थे,
जी
उन्हीं हालात और वाकयात में रहते हुए उसने कुछ ना कुछ कर लिया। जरूरी नहीं होता, असल में मेरी एक फीलिंग ये भी है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि आइडिया या अचीवमेंट के हवाले से हमारी सोच होती है बहुत टॉप पर होती है हमारी रैंकिंग ना, कि मिसाल के तौर पर अगर मैं इसे यूं लूं कि एग्जामिनेशन हॉल में जब कोई शख्स पेपर दे रहा है तो ख्वाहिश तो उसकी ये होगी कि मैं 100 में से 100 मार्क्स ले लूं, लेकिन ये शायद फिजिबल नहीं हो पाता ना। तो आप ये देखें कि आपने क्या किया, यकीनी तौर पर वहां पर जब रिजल्ट आता है तो किसी ने 99 मार्क्स लिए होते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ है, लेकिन किसी ने पासिंग मार्क्स लिए होते हैं। नतीजतन इतना जरूर होता है कि आप उस ग्रेड से निकल कर अगले ग्रेड में चले जाते हैं। तो बाज औकात आपने जो अपने जहन में कामयाबी का एक रेशो रखा हुआ होता है या एक आप कह लीजिए बुलंदी रखी हुई होती है, वो अपने कद से और हकीकत से बड़ी रखी हुई होती है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जहां आइडिया के बाद उसको एग्जीक्यूट करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है, वहीं पे ये भी सोच लीजिए और जान लीजिए कि सबके नताइज एक जैसे नहीं आते, लेकिन अगर आप अपने एक कदम को उठाने से پچھلی کنڈیشن سے ابو ہو جاتے ہیں، اوپر ہو جاتے ہیں، کچھ ترقی کر جاتے ہیں، تو یہ بہرحال کامیابی ہے. اسے سیلیبریٹ کریں، انجوائے کریں اور اگلے قدم کی تیاری کریں. ہم بھی اگلے قدم کی تیاری کرتے ہیں اور اگلی پکچر شو کرتے ہیں. جی جناب، پکچر ہے جی، اور یہ واقعتاً پکچر دو اسٹیپ میں اگر ہم دیکھیں تو شاید اس کا لک الگ ہوتا کہ پہلے اپر ہاف دیکھتے ہو پھر لوئر ہاف دیکھتے تو کنڈیشن مختلف ہوتی، لیکن بہرحال تصویر آپ کے سامنے ہے. خالد بھائی کیا کہیں گے؟
کبھی کبھار سامنے جو
میں دیکھ رہا ہوں تصویروں میں ڈوب رہے ہیں، اتنا زیادہ نہ ڈوبے،
آپ پانی کی تصویریں زیادہ دکھا رہے ہیں. اصل میں جو دیکھنے سے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس تصویر میں اگر ٹاپ ویو دیکھا جائے اور جس طرح سے پانی کے اندر سے بھی تصویر دکھائی جا رہی ہے، اوپر سے بھی دکھائی جا رہی ہے، لیکن اگر ہم اس کو صرف اوپر سے دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آئس برگ ہے کہ جو سمندر کے درمیان ایک بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا ہوتا ہے، لیکن بہرحال کشتیاں جو ہے وہ اس سے دور سے ہی گزرنے میں احتیاط سمجھتی ہیں، کیونکہ اس کے قریب جائیں تو بسا اوقات چیز سطح پر جتنی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اندر بھی اتنی ہی ہو ایسا نہیں ہوتا، اندر بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور اوپر جو ہے وہ اس کا بہت تھوڑا سا حصہ ہے جو نظر آ رہا ہوتا ہے. اور دوسری طرف سے جو اس کا مکمل ویو ہے اسے دیکھا جائے تو نظر یہی آ رہا ہے کہ ایک شاپنگ بیگ ہے جو تھوڑے سے پانی میں ڈوب گیا ہے. تو بہرحال کرنا ایسا بھی نہیں چاہیے کہ شاپنگ بیگز کو آپ پانی میں پھینکتے رہیں، سمندری جانور ہیں، ان کے لیے نقصان دہ. تو کسی کے لیے اس طرح
نتیجہ کیا نکالیں گے آپ؟
جی نتیجہ یہ نکالیں گے کہ ایسا نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے صرف وہی کافی ہے،
مطلب شاپر الٹے نہ پھینکیں سیدھے پھینکیں.
پلاسٹک بیگ کا یہاں پر صرف میٹر نہیں ہے، یہاں پر کیونکہ دو مختلف اینگل سے دیکھنے سے دو مختلف ویوز نظر آ رہے ہیں
جی،
تو ہم چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے بسا اوقات بہت جلد بازی سے کام لیتے ہیں اور جو پہلی نظر میں دکھ گیا سمجھتے ہیں وہی کافی ہے. حالانکہ تھوڑا سا دیر تک اسے دیکھا جائے، یا جب یہ پکچر ڈسپلے کی گئی تو آپ نے کہا کہ یہ ویو اگر ہمیں دو اسٹیپ میں دکھایا جاتا تو ذہن کچھ اور رائے دیتا، کوئی اور بات سامنے آتی. تو ایسے ہی جب ہم اپنی زندگی میں کوئی میٹر دیکھتے ہیں، کوئی معاملہ دیکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ میں دیکھتے ہی کوئی رائے قائم ہو جائے، لیکن جب اس کو ڈیٹیل سے دیکھا جاتا ہے تو رائے انسان کی تبدیل ہو جاتی ہے. تو فوراً سے، یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بک کا کور دیکھ کر اس کا مضمون پہچان لیتے ہیں.
ہاں، وہ پہلے پر گن لیا کرتے تھے.
جی، اڑتی چڑیا کے پر گن لیا کرتے ہیں، تو وہ پر صحیح گنے یا غلط گنے، جو مضمون آپ نے سمجھا وہ صحیح تھا یا غلط، بہرحال اس کو بھی پھر چیک کرنا باقی رہتا ہے. ہر چیز ایک ہی دفعہ میں یا ون ویو میں سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہوتی، چیزوں کو وقت دینا چاہیے.
سلمان بھائی کیا دیکھ رہے ہیں؟
میں یہ کہوں گا جیسا انہوں نے بتایا کہ ایک پانی کے اندر ایک بڑا سا اوپر ٹاپ شاٹ سے لیا جائے تو اس کو ایک گلیشیئر کوئی ایک بڑا سا نظر آتا ہے.
جی صحیح.
اور اندر سے دیکھا جائے تو ایک شاپنگ بیگ ہے جو کہ لوگ پھینک دیتے ہیں، جیسے آج کل سیزن وغیرہ ہو رہا بارشوں کا تو شاپرز وغیرہ بہت زیادہ یعنی کہ وسٹیج ہوتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے نقصان بہت ہے. مجھے تو بس دیکھنے میں یہ بالکل ایگزیکٹلی یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک شاپنگ بیگ ہے تو اس کو ہمیں پانی سے اوائڈ کرنا چاہیے کہ پانی میں نہیں پھینکنا چاہیے، اسے اس کی جگہ پہ ڈسٹ بن میں پھینکے یا پیسے نہ نارمل پھینکا جائے.
یعنی ویسٹیج جب ہو رہی ہے کوئی چیز، بالخصوص پلاسٹک بیگ ہے، پولیتھین بیگز ہیں، تو اس کو پھینکنے میں احتیاط کریں. ویسے بھی سائنٹیفکلی بھی اسد بھائی سائنسی طور پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ پولیتھین جو ہے یا پلاسٹک بیگ جو ہے یہ مطلب بہت طویل عرصے تک جو ہے ختم نہیں ہو پاتے، ڈسٹروئے نہیں ہو پاتے، زمین کا حصہ یا کسی چیز کا حصہ ریزالو نہیں ہو پاتے اور یہ اپنی اصلی حیثیت میں برقرار رہتے ہیں. تو اوائڈ کرنا چاہیے بالکل.
تو پابندی لگ بھی چکی ہوئے بھی اور ظاہر اس کے نقصانات ہیں، اور اس پہ جو کیلکولیشنز بیان کی جاتی ہیں بڑی ہوش ربا ہیں کہ اگر اسی اسپیڈ کے ساتھ آل پلاسٹک کی بات کی جاتی ہے، وہ اس شیپ میں ہو یا کسی اور شیپ میں، کہ اگر اسی طرح استعمال رہا تو اس سے ہمارے انوائرمنٹ کو بہت زیادہ تباہ کن نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.
اس کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ بھی بہت ساری چیزیں کہی جا رہی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض چیزیں تو ہماری یہاں और जगहों पर भी होगा, लेकिन ऐसा लगता है रिवर्स गियर लग रहा है, जैसे वो कपड़ों के बैग्स और जो है ना कागज के बैग्स जो हैं वो दोबारा आ रहे हैं, गत्ते आ रहे हैं इस तरीके से। तो बहरहाल कचरे की कोई भी फॉर्म हो, जो जब भी आप कोई चीज़ यूज करते हैं और वो यूजलेस हो गई है, तो अब उसे आखिरी आरामगाह तक कैसे पहुंचाना है या उसे ठिकाने कैसे लगाना है, तो इस पे गौर व फिक्र कर लें। और हमारा माशरा बिलखसूस में पाकिस्तान के तनाजुर में कहूँ तो शायद हमारा कोई गली महल्ला और इवन कोई पार्क, कोई पहाड़, कोई ग्लेशियर या कोई सी साइड ऐसा ना हो कि जिसके बारे में हम ये दावा कर सकें कि जी यहाँ पे अवामी सतह पे एहतियात की जाती है। तो अल्लाह करे हम एहतियात करें। बहुत खूबसूरत मुल्क मिला है और दूसरी जगहों की बहुत सारी खूबसूरतियों के गीत गाते हैं, लेकिन ये याद रखिए कोई भी खूबसूरती जो है, कोई किसी भी मंजर की खूबसूरती जो है, किसी भी शहर की खूबसूरती, किसी भी सी साइड की खूबसूरती को कायम रखने में वहाँ के मकामी अफराद और विजिटर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो हम तो यहाँ के मकामी, हमें ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और जो विजिटर्स हैं जब वो हमें देखेंगे, हम हो या कोई और हो, तो वो भी एहतियात करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिर एक जो हुसन की कैफियत है वो बरकरार रहेगी। असद भाई, पॉलीथीन बैग्स पे तो आपने फरमा दिया, तो आप इससे क्या एक और कोई मैसेज दिलाएंगे हमें?
जी, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि बाज़ औक़ात बंदा किसी चीज़ से घबरा रहा होता है, लेकिन हकीकत उसके बरक्स होती है। जैसा कि इस तस्वीर में है, आइसबर्ग देख के कोई अपना रास्ता तो तब्दील कर लेगा, दूर से घूम कर जाएगा, लेकिन हकीकत में आइसबर्ग नहीं है बल्कि नीचे एक खोखला सा शॉपर है, तो जिससे धोखे की एक कैफियत है। दूसरा एक मैसेज ये भी हो सकता है कि इंसान को जाहिर व बातिन में यकसां होना चाहिए ताकि लोग धोखा ना खाएं, कि आप जैसे हैं वैसे ही दिखने चाहिए। ऐसा ना हो कि अंदर तो शॉपर है और ऊपर से आप आइसबर्ग बने हुए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो है वो जाहिर व बातिन यकसां हो, ताकि आप में अगर कोई पॉजिटिव चीज है तो लोग आइसबर्ग समझ के आपसे दूर ना भागें।
सही है।
और अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव चीज है तो लोग धोखा खाकर उससे नुकसान ना उठाएं।
और आप भी अपनी इसलाह कर लें। अब्दुल वाजिद भाई, माशाल्लाह, असद भाई, अल्लाह आपको जजा खैर दे, इतना प्यारा मैसेज आपने उमूमी सी तस्वीर में से निकाला है। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफा फरमाए, अकल को सलामत रखे। अब्दुल वाजिद भाई, ये देख रहे हैं हम हैं को आकब कुछ नजर आते हैं को क्या है ना, इस तरीके से है, लोग इस मंजर को देख के क्या समझेंगे, क्या लेंगे? पहले तो आप अपना नतीजा दीजिए हमें कि आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं।
उर्दू में एक लफ्ज है कि फलां का जो इल्म है ना, सती इल्म है। सती इल्म का ये मतलब होता है कि उसको मामले की हकीकत का नहीं मालूम, और बस चिड़िया की तरह उसने एक नजर डाली है और जो चीज उसको समझ आई है उसी को हकीकत समझकर अब वो उसी पर मुसिर है और दूसरों को भी यही कह रहा है कि यही चीज है, तुम्हें नहीं पता मुझे पता है।
ठीक है।
तो ये जो सती इल्म होता है ना, उसके नुकसानात की बेहतरीन अक्कासी ये तस्वीर कर रही है, और जिसकी तरफ असद भाई ने बड़ी खूबसूरती से इशारा भी फरमाया कि जिनका इल्म सती होता है अपने सती इल्म की बिना पर कुछ डिसीजन लेते हैं।
सही।
और वो डिसीजन ऐसे होते हैं कि उनका इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत लंबे अरसे तक होता है।
सही।
तो अपने इल्म को करेक्ट कीजिए। अब जिसका सती इल्म होगा वो देखेगा कि भाई ये तो आइसबर्ग है, यहाँ से तो मुझे जाना ही नहीं चाहिए, मेरा शिप अगर इससे टकरा गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो जरा इसके मजीद करीब आए, इसको टेक ऑन करे, इसको चैलेंज करे, इसके करीब आए, अपने खौफ को पीछे रखे, अपनी घबराहट को पीछे रखे और करीब आए, तो उसको पता चलेगा कि नहीं साहब, ये आइसबर्ग नहीं है, ये तो एक शॉपर है। और अगर ये आइसबर्ग हो भी है, महरोज भाई जो बात मैं कहना चाहता हूँ, तो इस आइसबर्ग के होने के बावजूद इसके बीच में एक रास्ता मौजूद है, आप यहां से किसी ना किसी तरीके से गुजर सकते हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट दिस थिंग, कि आपको जिंदगी में कभी ना कभी कोई बहुत मुश्किल पेश आती है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, आइदर यू टर्न योर फेस अवे एंड यू रन अवे, कि आप अपना मुंह फेरे, पीठ दिखाए और भाग जाए,
मंजिल ही छोड़ दी।
हाँ, और एक ये है कि आप उसको टेक ऑन करें, आप उस चैलेंज को कबूल करें। आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, आप पे घर की जिम्मेदारी पड़ गई, तो अब आप भागे नहीं, उस जिम्मेदारी को निभाएं। आप जो है किसी से आपका सामना हो गया, अब आप ये समझते हैं कि अब मेरी लाइफ खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं है। आप उसको टेक ऑन करें, लोगों से बातचीत करें, अगर कोई परेशानी है, कोई दुश्मनी है, तो जब आप चार लोगों के साथ मिलकर बात करेंगे तो मामला आसान हो जाएगा। अच्छा, इसमें खास तौर पर पैगाम है खवातीन के लिए कि बाज़ औकात उनका जो एनवायरनमेंट होता है वो उनको बड़ा डरावना और भयानक लगता है,
सही।
और वो ये समझती हैं कि अगर मैं इस मामले में फंस गई हूं तो मैं नहीं निकल सकती,
सही।
अपने बड़ों से मशवरा कीजिए, अपने वालिदैन को इन्वॉल्व कीजिए, अपने भाइयों को इन्फॉर्म कीजिए, अपने अपने कबीले अपने खानदान के बड़ों को बताइए और उनके साथ मिलकर अपने घर के मसले को
बात परेशानी अब्दुल वाजिद भाई शोहर के साथ मिलके भी निकला जाए,
बिल्कुल ऐसा होता
आपने
है।
स्किप कर दिया इतने बड़े,
मैं माजरत चाहता हूँ, आपने अच्छी तवज्जो दिलाई कि सबसे पहले तो जो है आप खुद उस आइसबर्ग के पास जाए ना जिसको आप समझ रही है कि बड़ी परेशानी, सबसे पहले तो शोहर से बात करें, अगर वहां से मामला हल ना हो तो फिर आप दीगर लोगों से बातचीत करते हुए मामले को खत्म करने की कोशिश करें। तो पैगाम ये है कि टेक ऑन करें, बल्कि करीब जाएं तो आपको खुद रास्ता नजर आ जाए।
अच्छा, यहाँ पे ना असल में एक चीज चाहूंगा, अगर तो तस्वीर में तो नहीं है लेकिन एक बात कही जाती है कि जी फर्स्ट इम्प्रेशन वाली ना, ये फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, तो एक इस मकूले को भी ले लें आप। लेकिन इधर भी अगर हम देखें और जिंदगी के बहुत सारे मामला में इवन पर्सनैलिटीज के एतबार से भी देखें कि बाज़ोकात ये होता है कि एक शख्स को हमने पहली नजर देखा तो वो अच्छा नहीं लगा, या इसके बरक्स कि वो अच्छा लगा, और फिर जब हमें चारों नाचार किसी ना किसी तौर पर उसके साथ काम करना पड़ गया, यानी उसकी और हमारी सिटिंग एक साथ हुई, मिसाल के तौर पर ऑफिस इन्वायरमेंट है तो अब वहां पे सारे अफराद तो मेरी मर्जी से नहीं रखे जाएंगे या आपकी मर्जी से नहीं रखे जाएंगे, तो वहां पे हम उसे शुरू में बर्दाश्त कर रहे होते, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद पता चलता है कि नहीं, मेरा ही व्यू गलत था, ये बंदा तो वैसा नहीं है जैसा पहली मुलाकात में लगा था। जैसे बाज लोगों के बारे में लगता है इनमें बड़ा एरोगेंस है, बाज लोग बड़े पीछे पीछे जा रहे होते हैं, तो वो दोनों बातें बाज औकात गलत साबित हो जाती
है। ये जो आपने कहा ना फर्स्ट इम्प्रेशन,
जी जी,
तो इसको लास्ट इम्प्रेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्प्रेशन भी कहा जाता है, तो किसी हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर मकाम पर यह बात दुरुस्त नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन बहरहाल कुछ भी आप कह लें कहीं ना कहीं उसके अंदर बनावट हुआ करती है। तो उमूमन शोहर बीवी का रिश्ता हो, दोस्तों का रिश्ता हो, बॉस और उसके मातहत का रिश्ता हो, या कोई भी सभी रिश्ता हो, तो फर्स्ट इम्प्रेशन इम्पॉर्टेंट है, इसे इनकार नहीं, लेकिन शायद लॉन्ग लास्टिंग जो है ना वो आपका जो सस्टेनेबल जो आपकी पर्सनैलिटी है वही मैटर करती है, वरना आप कितने दिन जो है वो एक बनावट के अंदाज में या आर्टिफिशियल माहौल के अंदर गुजारेंगे, कुछ अरसे के बाद जो है वो चीजें खुलना शुरू हो जाती हैं और आपकी जो असल पर्सनैलिटी है वो फिर जाहिर होती है। तो हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और वो शायद मुझे लगता है कि जिंदगी का ज्यादा बड़ा हिस्सा होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी से हम मिले और एक ही दफा मिले और आइंदा कभी भी मुलाकात नहीं होगी और उसी की शफात पर हम जो है वो जिंदगी गुजारेंगे, ऐसा तो नहीं होता, बहुत कम होता है। ज्यादातर यही होता है कि जिससे आपकी एक मुलाकात हुई है तो उम्मीद है दूसरी भी होगी, एक दिन गुजारा है तो हो सकता है चार दिन और भी गुजरें, तो दोनों पर ख्याल रखना चाहिए, लेकिन जो लॉन्ग लास्टिंग है वो आपका अदर देन फर्स्ट इम्प्रेशन।
यानी इससे मैं नतीजा ये निकालूं आपकी बात से और मदनी चैनल के नाज़रीन की तरफ बढ़ाऊं, कभी भी अक्सर पहली मुलाकात पहला इम्प्रेशन जो है उसके तहत आप कोई बहुत बड़े और नाजुक फैसले ना करें, थोड़ा वक्त देकर देख लें, हो सकता है पिक्चर का दूसरा रुख आपके सामने आ जाए और थोड़ी सराउंडिंग में जो है कुछ सब्जा हो, कुछ ठंडक हो, कुछ मिठास हो, कुछ फवाइद हो आपके लिए, तो थोड़ी सी स्पेस दें। क्विक रिस्पॉन्स हर जगह पे मुफीद नहीं होता, थोड़ा सा तहम्मुल के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह तस्वीर का एक ही नहीं कई रुख आपको नजर आएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली पिक्चर की तरफ और शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में एक मजीद तस्वीर को। जी जनाब, अल्लाह करे ऐसे जूते मार्केट में दस्तियाब हों, है अब्दुल वाजिद भाई, कि हम चलें तो जो है ना वो इस तरीके से फूलों की क्यारियां बनती चली जाएं।
एक भी तो दे दिया आपने।
अच्छा दे दिया मैंने, चले माफ फरमा दे क्या कहेंगे असद
जी, वाजे जो व्यू है वो यही है कि आपको ऐसा होना चाहिए कि जहां पर भी अलामती तौर पर आपके कदम पड़े और आप जाएं तो पीछे आप अच्छी यादें छोड़कर जाएं,
सुभान
गुलो गुलजार हो वो जगह, اور لوگ آپ کو جو ہے وہ سبزہ زار کی طرح ہرا بھرا ماحول کے اندر جو ہے وہ یاد کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں سے گزر کر چلے گئے تو آپ کے جانے کے بعد پہلے وہ جگہ باغ و بہار تھی تو اب جو ہے وہ بنجر اور برائی والی جگہ جو ہے وہ مشہور ہو گئی. تو کسی کے ساتھ ملاقات کر کے آگے بڑھیں, کسی کے ساتھ کام کر کے آگے بڑھیں. زندگی کے اندر ایسا ہوتا ہے دونوں طرح کے لوگ ہم سے ملتے ہیں, ہم لوگوں سے ملتے ہیں, کہ ان کے ساتھ بیتا ہوا وقت جب ہم یاد کرتے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار اس کے ساتھ جو تین دن گزارے تھے بہت اچھا آدمی تھا, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور وہ چلا گیا, کاش اور ہوتا تو میری زندگی جو ہے وہ گل و گلزار ہوتی. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ بیتا ہوا جو ماحول ہوتا ہے, جو یادیں ہوتی ہیں وہ بڑی تلخ ہوتی ہیں کہ یار اس کے ساتھ جو تین دن گزارے تھے تو کاش میری زندگی میں دوبارہ اس کے ساتھ گزرنے والے وہ تین دن کبھی نہ آئیں, کیونکہ اس کے جانے کے بعد جو یادیں ہیں وہ اچھی نہیں. تو اٹ ڈیپینڈز اپون یو کہ آپ اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جاتے ہیں.
ویسے یہ تو عرض کر دوں میں مدنی چینل کے ناظرین کو, جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے ایسا ہی, کہ یہ حقیقی پکچر ہو یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ ہے بھی نہیں, یہ ایک امیجینیشن ہے کہ کاش ایسا ہو. سلمان بھائی پھول کھل رہے ہیں
ماشاء اللہ. اور جیسے یہ پھر میں وہی بات کروں گا, اسد بھائی کی بات سے اتفاق کروں گا, جیسے انہوں نے کہا کہ جب آپ قدم بڑھاتے ہیں ڈیفینیٹلی کہ اچھا ایٹیٹیوڈ, اچھا بیہیویئر انسان کی جو اپنی شخصیت ہوتی ہے نا, وہ انسان پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے. دنیا سے کوئی جاتا ہے تو اس کو اچھے الفاظوں میں یاد رکھا جائے, اس کی اچھی باتیں آپ نوٹس کریں کہ نہیں یار فلاں بندہ بہت اچھا تھا یا فلاں بندہ ایسا تھا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کو جب قدم بڑھائیں تو یہ چیز کو ذہن میں رکھا جائے کہ ہمیں پیچھے نہیں دیکھنا, ہمیں آگے دیکھنا ہے. اور آگے جو پریشانیاں جو حالات کسی کے ساتھ ہیں آپ اس کو فیس کریں, اس کے ساتھ شیئر کریں. ٹھیک ہے,
یعنی آپ کی بات جو ابھی گزری اس میں اگر میں لوں کہ ہم قدم تو آگے بڑھا رہے ہیں لیکن پیچھے ایک دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہاں پہ ہمارا ایک پوزیٹیو بیہیویئر پوزیٹیو یاد ہونی چاہیے کہ لوگ یاد کریں تو مسکراہٹ آئے, لوگ یاد کریں تو آپ کے لیے اچھے الفاظ آئے,
اچھے الفاظوں میں یاد رکھا جائے. جب آپ اچھا کریں گے ڈیفینیٹلی لوگ آپ کو اچھے الفاظوں میں یاد رکھیں گے.
ہاں اچھا کریں گے,
بہت اچھی چیز ہے,
اچھا کریں گے تو اچھے الفاظوں میں یاد رکھا جائے گا. بڑا کمال کی بات ہے, بعض اوقات اصل بھائی اچھا کر نہیں رہے ہوتے لیکن خواہش ہی ہوتی ہے اچھے الفاظ میں یاد.
میں یہی کہوں گا پھر بھی کسی کے لیے اللہ نہ کرے نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے. آپ کے ساتھ کسی نے برا بھی کر دیا تو لوگ پھر بھی نیگیٹو اس کو سوچتے ہیں کہ نہیں یار اس نے فلاں نے یہ کر دیا, ایسا سوچنا نہیں چاہیے.
کمال کر دیا آپ نے, دوسری بات کمال کی کر دی کہ ایک شخص نے اچھا نہیں کیا لیکن ہم تو اچھا سوچیں اس کے بارے میں. عبد الواجد بھائی کیا کہیں گے؟ ویسے آپ جو ہے نا بالکل الگ ہی چیز دیکھتے ہیں. میں سوچ رہا تھا, میں ڈھونڈ رہا تھا اس میں جب اسد بھائی بیان کر رہے تھے نا, میں سوچ رہا تھا آپ کیا بیان کریں گے, وہاں تو فیس ایکسپریشن تھے, اب یہاں کیا لاتے ہیں. جی جی,
اس میں بہت سی چیزیں ہیں. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ قدم اٹھائیں گے تو تبھی آپ کو جو ہے نا زندگی اپنا رنگ دکھائے گی. اب یہ قدم اٹھ رہا ہے تو نیچے زندگی کا کلر نظر آ رہا ہے, ایک تو ہے یہ.
کہاں سے لاتے ہیں یہ بات؟
یہ تصویر سے لایا ہوں.
ٹھیک جی.
دوسری چیز یہ ہے کہ مہروز بھائی, ضروری نہیں کہ آپ زندگی میں جو کام کریں اس کا بینیفٹ آپ کو ہی ملے. بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا بینیفٹ آپ کو نہیں ملتا, آپ کے بعد والوں کے لیے ہوتا ہے.
واہ واہ.
تو اب یہ قدم اٹھا کے صاحب آگے جا رہے ہیں, جو ان کے پیچھے آئیں گے اس کا بینیفٹ ان کو ہے.
صحیح.
ان کو ایک رستہ نظر آئے گا, ان کو ایک ڈائریکشن نظر آئے گی اور وہ پھر اس ڈائریکشن پر چلیں گے.
سبحان اللہ.
تو اپنی زندگی میں کچھ کام ایسے کیجئے لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے, لوگ خوش ہو جائیں یا لوگ جو ہے وہ کریں, لوگوں کے لیے نہ ہو, اللہ کی رضا کے لیے ہو, تاکہ بعد میں آنے والوں کو سہولت اور آسانی ہو. اور اس کی ایک بہترین مثال جیسے درخت لگانا ہے. درخت جو ہے وہ دادا لگاتا ہے اور اس کے سائے میں اس کا پوتا بیٹھتا ہے.
صحیح.
اور آج کل تو خاص طور پہ درختوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہمارے کراچی میں ہیٹ ویو گزری ہے, آپ کے علم میں ہے کہ یہ 2015 کا ریپلیکا ہے. 2015 میں جیسی ہیٹ ویو تھی ویسی یہ آج بھی فیل ہو رہی تھی, لیکن اس وقت نقصان زیادہ ہوا کیونکہ لوگ پریپیئرڈ نہیں تھے. اب لوگ جو ہے وہ ذہنی طور پہ تیار ہیں, تو درخت لگانے چاہیے. یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کا اثر پوری دنیا میں اب محسوس ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز میں یہ کہوں گا مہروز بھائی کہ زندگی میں نا کبھی کبھی امیجینیشن سے بھی لطف اندوز ہونا چاہیے.
واہ.
کہ آپ ہارے ہوئے ہیں, ٹوٹے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, तो आप जिंदगी में अगर किसी चीज को अचीव नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, तो कम से कम उसको सोच लें। तो उसको सोचने से भी बाज औकात आपके जो जख्म होते हैं ना वो भर जाते हैं। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि कुदरत इंसान के साथ क्या क्या करती है। बाज बच्चे होते हैं वो आइसक्रीम खाने का शौक रखते हैं, उनकी तमन्ना है, लेकिन उनके पेरेंट्स जो हैं वो फाइनेंशियली इतने नहीं होते कि उनको खिला सके।
एक मिसाल दे रहे हैं आप?
हाँ जी, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तब क्या है कि वो बच्चा जो है वो आइसक्रीम के तसव्वुर में उसको सोचता रहता है, वो सो जाता है। तो कुदरत उसके बहलावे का इंतजाम कुछ इस तरह से भी करती है कि उसको ख्वाब आता है और वो उस ख्वाब में आइसक्रीम खा रहा होता है। यानी ये हमने पढ़ा है, देखा है और खुद हमारे साथ भी होता है।
या फरजानों को गोया के तरगीब दे रहे हैं कि कभी कभी दीवानगी में भी मजा है।
जी हाँ, ये आप ये भी कह सकते हैं। तो इमेजिनेशन जो होती है ना वो आदमी के जख्मों पे मरहम रख देती है।
ठीक।
तो कभी कभी लाइफ में अगर आप नाकाम हैं तो कामयाबी को इमेजिन कर लें, आपके जो सोए हुए जज्बे हैं ना वो बेदार हो जाएंगे।
सुभानअल्लाह।
आप अगर गरीब हैं तो अमीर होने को फैंटेसाइज कर लें, इमेजिन कर लें, तसव्वुराती दुनिया में आप अमीर हो जाएं। तो अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आपको एक कल्बी तौर पे स्ट्रेंथ मिलेगी। इसी तरीके से अगर आपकी तौबा बार बार टूट जाती है, आप जो है वो अपने आप को बड़ा गुनहगार फील करते हैं, बड़ा लोली फील करते हैं, तो कभी ये तसव्वुर करें कि यार मैं नेक हो जाऊं तो क्या होगा, मेरी सुबह का आगाज नमाज फजर से हो और उसके बाद मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूँ, जब रात को सो रहा हूँ तो रात को कुरान की तिलावत करके सो रहा हूँ, सारा दिन हलाल कमाता हूँ और उसके साथ अल्लाह को याद भी करता हूँ। तो ये जो आपकी इमेजिनेशन है ये आपको अमल का जज्बा देगी और अल्लाह ने चाहा तो आप नेक हो ही जाएंगे, क्योंकि इमेजिनेशन जो है वो तमन्ना है।
सही।
और जब आपके दिल में किसी चीज की तमन्ना होगी तो वो चीज आपको हासिल होगी।
अल्लाह।
अगर तमन्ना का स्पार्क ही नहीं है तो उस चीज के मिलने की फिर बाज़ात उम्मीद भी नहीं होती, क्योंकि आप जिस चीज की ख्वाहिश करते हैं, तमन्ना करते हैं, उसके लिए आप स्ट्रगल करते हैं और फिर जिसके लिए आप स्ट्रगल और एफर्ट करते हैं वो चीज आपको मिलती है।
ठीक। खालिद भाई, इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनने के बाद, फूलों भरी तस्वीर देखने के बाद आप क्या इरशाद फरमाएंगे?
माशाल्लाह, असल में ऐसा लग रहा है कि इनके पैर रखने से पहले जो इमेजिनेशन है यहाँ कि शायद इतना अच्छा मंजर नहीं था। इंसान को हमेशा जो है वो इन्वायरमेंट बना बनाया मिले ऐसा नहीं है। इंसान को बहुत सी जगह ऐसी मिलती हैं कि वो ग्रे स्ट्रक्चर पर होंगी, उस पर रंग भरना फिर आपका काम है। तस्वीरें आपको मिल जाती हैं तो फिर उसको खूबसूरत बनाना, ग्रे स्ट्रक्चर पर जो तस्वीर होती है वो बहरहाल एक फीकी सी चीज होती है। अब आप पर है कि आप उस पर कौन से रंग डालते हैं, कौन से फूल खिलाते हैं। जैसे छोटे से व्यू में देखा जा सकता है, इंसान सिर्फ ये ख्वाहिश करता रहे कि मेरे लिए कोई काम करके जाए और सिर्फ मुझे आसान राहों पर ही चलना पड़े, मेरी गुजरगाहें सब्जाजार बनती चली जाए, मेहनत कोई और करके जाए। हर किसी के हिस्से में इस तरह की चीजें नहीं आती। बहुत सी जगहों पर आपने खुद जमीन को नरम करना होता है, खुद उसमें बीज बोने होते हैं, फिर शायद ये जो मेहनत थी वो आपके हिस्से में रही हो। और जिस तरह अब्दुल वाजिद भाई कह रहे थे कि उसकी फसल जो है वो आपकी औलाद खाए, तो इंसान को थोड़ा सा अपने ऊपर ये पैन भी लेना चाहिए कि मैंने अपनी जिंदगी को इस अंदाज से भी गुजारना है कि मेरी जैसे तैसे गुजरे, लेकिन मैंने अपने बाद वालों के लिए आसानियां कर ली।
सुभानअल्लाह। अपने बाद वालों में अपनी औलाद भी शामिल है और तमाम दुनिया के अफराद भी शामिल है, उनके लिए आसानियां हो। एक बात मैं भी अर्ज करता चलूं, बड़ी पॉजिटिव बातें हुई है इस तस्वीर के तनाजुर में, और तस्वीर लग भी बहुत प्यारी रही है। किरदार की बात हुई कि जब आप जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, चाहे एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे जिंदगी के एक स्टेप से आप किसी और कायनात में जा रहे हैं, आलम बरज़ख में जा रहे हैं मरने के बाद, पीछे ऐसी बातें, ऐसे काम छोड़ के जाइए जो खुशबुएं फैलाते रहें, रंग लुटाते रहें। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। लेकिन एक बात जो कि अगरचा नेगेटिव होगी इस सारी पॉजिटिव बातों में, लेकिन मैं उसे पॉजिटिव मैसेज देना चाहता हूँ, वो ये कि बाज़ औक़ात ये होता है कि कहीं पे थोड़ी बहुत खुशनुमा कोई चीज़ होती है और हमारे जुमले, हमारे काम और हमारे कदम उसको मलिया मेट कर देते हैं। अगर आपको इस तनाजुर में लीजिए कि ये तो सारी बातें ये है ना कि पांव उठ रहा है तो पीछे फूल छोड़ के जा रहा है, लेकिन अगर मैं यूं लूं कि बाज़ औक़ात स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता है फर्श का कि वो कहीं कहीं घास फूल वगैरह होते हैं, अगर मैं इसको यूं लूं कि किसी ने स्ट्रक्चर बनाया था ये कि ये फूल वगैरह थे और इन साहिब ने जो भी है इन्होंने जानते बूझते सारी स्पेस होने के बावजूद उसी के ऊपर कदम रखे तो दो चार कदमों के बाद ये फूल ये क्यारी खत्म हो जाएगी। तो हमारे सराउंडिंग में भी, हमारी फैमिली में भी, हमारे ऑफिस में भी, हमारे वर्कशॉप में भी, हमारे महल्ले में भी बाज़ अफराद होते हैं जो मुआशरे को गुलगुलजार करना चाह रहे होते हैं, छोटे छोटे से बीज बो रहे होते हैं, छोटी छोटी सी कलियां उनमें आ रही होती हैं, और बाज़ औक़ात हम अपनी नेगेटिविटी की वजह से उनको मसल के रख देते हैं और इससे दो नुकसान होते हैं, एक तो वो खूबसूरती भी ख़त्म हो जाती है जिसे परवान चढ़ना था, और इससे भी बढ़कर ये कि बाज़ औक़ात जो फर्द ये सारे काम करने की कोशिश कर रहा होता है वो डीमोटिवेट हो जाता है और फिर उसको मजीद यारा नहीं रहता कि मैं मजीद करूँ। तो बहरहाल हमने क्या करना है, अच्छी यादें भी छोड़नी है अच्छे किरदार अच्छे अल्फाज अच्छे अखलाक के एतबार से, और हमने ऐसे लोगों को सपोर्ट भी करना है जो हमारे अतराफ में किसी भी किस्म का अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन आपने मुख्तलिफ तस्वीर भी देखी और उस पर हमारे मेहमानाने जी वकार की मुख्तलिफ राय भी देखी, लेकिन एक बात ये भी तो है ना कि आपकी राय क्या थी और आपकी राय के बारे में क्या थी, तो वो भी हम तक पहुँचनी चाहिए। मदनी चैनल देखते रहिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आपकी राय क्या कहते